अरुणिमा अपने कमरे में थी और वो रजत के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई सवाल मत पूछना। रजत ने अरुणिमा को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम कितनी खुश हो ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम्हारे गालों पर थप्पड़ के निशान हैं, जिसे तुमने मेकअप से छुपाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, पर शायद तुम भूल रही हो कि मैं आर्मी में हूँ और दुश्मनों से हमारा पाला पड़ता ही रहता है। उनके शरीर पर कितने जख्म हैं और कितने हमने दिए हैं, ये हम उन्हें देखकर बता सकते हैं। मिश्री ने भी रोते हुए कहा, बताओ दीदी, क्या जीजाजी सच में तुम्हें मारते हैं? अरुणिमा ने इस सवाल पर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, लेकिन इस बार वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। उसने मिश्री को गले से लगा लिया और वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मिश्री कि मैं यहाँ पर हर रोज मरती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि हर दिन मैं यहाँ पर कैसा नरक झेलती हूँ। वो इंसान पागल है और मैं हर रोज उसका पागलपन झेलती हूँ, कभी अपने शरीर पर तो कभी अपनी आत्मा पर। ये कहकर अरुणिमा मिश्री के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। मिश्री और रजत हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसका मतलब आस्तिक सिर्फ उन्हें ही बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो अरुणिमा को भी प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन इन सब में शारदा जी एक भी बार बिना अरुणिमा की तरफ देखा है और ना ही वो कहाँ पर किस हालत में है ये देखा। शारदा जी का ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो रखा था, उन्हें तो अपने आसपास हो रही चीज़ों का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तभी रजत की नज़र अरुणिमा की पीठ पर जाती है, बालों के बीच में से झांकती हुई उसकी हल्की सी पीठ, जहाँ पर इस समय बेल्ट के निशान थे जो काले पड़ रखे थे। उसे देखकर रजत के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी जाए और जाकर आस्तिक का खून कर दे, लेकिन उसके हाथ कानून से बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद अरुणिमा मिश्री से अलग होती है और उसके आंसू पोंछती हुए कहती है, रो मत मिश्री, ये तो मेरी किस्मत है जिसे मैं झेल रही हूँ। तुम मेरी छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अरुणिमा के सवाल पर मिश्री का चेहरा नीचे झुक जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। मिश्री का इस तरीके का व्यवहार अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर अरुणिमा समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने गहरी सांस लेते हुए बोला, मिश्री सब ठीक तो है ना? अरुणिमा की हमदर्दी पाकर मिश्री जोर जोर से रोने लगी और अरुणिमा को गले लगाते हुए उसने कहा, सब खत्म हो गया है दीदी, सब कुछ खत्म हो गया है। हम सड़क पर आ गए हैं, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। माँ की ऐसी हालत है कि उन्हें मेंटल असाइलम में रखना पड़ रहा है और कल तो कोर्ट का नोटिस भी आया है जिसमें ये लिखा है कि हमारा घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है और हमें जल्दी वो घर खाली करना पड़ेगा। हमारी हालत भिखारी से भी बदतर हो गई है दीदी, अब हम क्या करें? मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा हैरानी से मिश्री को देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका परिवार इतनी बुरी हालत में ज़िंदगी जी रहा था। उसने तो सोचा कि अपने परिवार से दूर होने के बाद उसका परिवार सामान्य जीवन जी रहा होगा। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अपने परिवार के साथ संपर्क नहीं रखा। अपनी माँ के बारे में सुनकर तो उसकी और ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। कहाँ वो इस महल में ठाट से रह रही है, उसे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है और उसकी बहन लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा कर रही है। अरुणिमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने अलमारी की तरफ चली जाती है और वहाँ से एक हार लेकर आती है। वो उस हार को एक कपड़े में लपेटकर मिश्री के हाथ में देते हुए कहती है, ये लो और इसे बेच देना, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों से माँ का इलाज करवाना। रजत और मिश्री हैरानी से अरुणिमा को देख रहे थे। इससे पहले कोई कुछ कहता, वहाँ पर एक तेज चीखने की आवाज़ सबके कानों में आती है। सबका ध्यान शारदा जी की तरफ जाता है जो अब सोफे पर नहीं बैठी हुई थी। अरुणिमा अपनी बहन के साथ दुख बांटने में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शारदा जी कब सोफे से उठकर बालकनी की तरफ चली गई हैं। शारदा बालकनी में जाकर अपने बालों को खींचते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। कौन हो तुम सीमा? सीमा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, सीमा मुझे मत मारना। शारदा जी किसी रोबोट की तरह चलते हुए सोफे से खड़ी होती हैं और बालकनी की तरफ आती हैं। वो बालकनी से नीचे गार्डन की तरफ झांक ही रही थी कि तभी उन्हें झाड़ियों में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है जो शारदा जी को देखकर हंस रही थी। अरुणिमा, रजत और मिश्री तीनों बालकनी में आते हैं और शारदा जी को संभालने लगते हैं। अरुणिमा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन शारदा जी उन तीनों की पकड़ से छूटते हुए जोर जोर से झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, वहाँ भूत है, वो भूतनी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचा लो। शारदा जी वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इस तरीके से पैनिक करने की वजह से उनका बीपी लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। अपनी माँ को बेहोश होता देख मिश्री जोर जोर से रोने लगती है और अरुणिमा की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन रजत को इस समय हालातों को संभालना था। वो जल्दी से शारदा जी को गोद में उठाकर बिस्तर पर लाता है और उन्हें लेटा देता है। अरुणिमा समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से अपने कमरे से निकलती है और नीचे पार्टी एरिया में आती है जहाँ पर सब लोग इस वक्त खाना खा रहे थे। अरुणिमा के चेहरे की घबराहट देखकर आस्तिक समझ गया था कि कविता ने अपना काम कर दिया है।
आस्तिक अरुणिमा की बेइज्जती करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि अरुणिमा ने आस्तिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वो चलते हुए सीधे पृथ्वी के पास आती है। पृथ्वी इस समय अपने किसी दोस्त से जाह्नवी को मिलवा रहा था, तभी अरुणिमा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। पृथ्वी हैरानी से अरुणिमा को देखने लगता है तो अरुणिमा कहती है, पृथ्वी जल्दी चलो, मेरी माँ को कुछ हो गया है। पृथ्वी की बात सुनकर पृथ्वी और जाह्नवी दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरुणिमा और कीर्ति भी उनके साथ थे। वो सब इस समय आस्तिक के कमरे में पहुंचते हैं।